राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 1992 प्रातः लगभग 9 बजे वाराणसी में हुआ। राम।
वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
नारायण। आवश्यकता और कामना का विश्लेषण किया था। आवश्यकता होने से कामना होती है, ऐसे हरेक की जची हुई बात है। तो कामना वास्तव में असत की होती है, आवश्यकता सत की है। पर असत के लिए भी मैंने ऐसे कहा था कि जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन की आवश्यकता शरीर के लिए है और कामना होती है वो इंद्रियों के लिए होती है। जैसे बढ़िया स्वाद लगे वो चीज लें, ये इंद्रियों का भोजन होता है और निर्वाह के लिए होता है ये शरीर का भोजन होता है। तो शरीर के आवश्यकता अन्न जल वस्त्र मकान की है, ये आवश्यकता है। मेरा तात्पर्य आप ध्यान देकर समझें, मेरा ये नहीं है कि आवश्यकता परमात्म तत्व की ही है, ये बात नहीं है। ये बात ही है, ये बात भी है, दोनों बातें हैं। अब थोड़ी कृपा करके मेरी बातों का ध्यान से सुने, मनन करें और ऐसे ऐसे प्रश्न मेरे सामने लाएं, मैं बड़ा खुश होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा। मेरी बातों को युक्ति से शास्त्र से खंडन करके और उसके तत्व को जानने के लिए विचार करेंगे तो मेरी प्रसन्नता होती है। आवश्यकता कहने का तात्पर्य ये नहीं केवल परमार्थ ही करना चाहिए। आपने जो पूर्व मीमांसा का सूत्र दिया कि धर्म किसका नाम है, जिससे अभ्युदय और निश्चेष की सिद्धि हो वही धर्म है। तो निश्चेष की सिद्धि से अभ्युदय भी होता है, ये नियम है। मानो लक्ष्य दूर रहने से बीच का लक्ष्य पूरा हो जाता है, बीच का ही लक्ष्य होने से अगर ये बना हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। इस बात को ध्यान सुन आप। जैसे हम यहाँ दरवाजे तक जाएंगे तो आज विश्वनाथ तक हम नहीं जा सकते और विश्वनाथ भगवान के जाएंगे तो दरवाजा बीच में आ जाएगा। निश्चेष की सिद्धि करने वाले के लिए अभ्युदय के लिए करना नहीं पड़ेगा। पारमार्थिक सिद्धि करने से समाज भी बड़ा सुंदर होगा। जिस समाज में पारमार्थिक सिद्धि करने वाले संत महात्मा हुए हैं, वे चाहे गृहस्थाश्रम में हो चाहे साधु आश्रम में, वो आश्रम वो समाज श्रेष्ठ हो गया है। यह निश्चित बात है, एकदम उत्तम बात है। तो अपनी आवश्यकता और कामना ये दो है, केवल इस दो के विभाग में ही कल का तात्पर्य था मेरे कहने का। आवश्यकता और कामनाओं को एक मान लेते हैं, ये एक नहीं है। लौकिक आवश्यकता अभ्यधि की है और पारमार्थिक आवश्यकता परमात्म तत्व की है। ये बात आपका कहना बहुत ही ठीक है, बढ़िया है, परंतु ये मेरा आशय बिल्कुल नहीं था, नहीं है और जीवन में भी नहीं रहा है, नहीं रहेगा, ऐसा दिखता है अभी, भविष्य में होगा क्या भगवान जाने। अगर ये बात कह नहीं सकते, पर मेरा लक्ष्य यही है। और गीता ने जो कहा है, अर्जुन तो भीख मांगने के लिए तैयार था। अर्जुन का अगर विचार देखा जाए तो वो युद्ध न करके और भिक्षा मांग के निर्वाह करना ही श्रेष्ठ समझता है। उसने श्रेय पद दिया, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोगतुम भैक्ष्यम अपी है लोके भैक्ष्यम भोगतुम अपी श्रेय। जो क्षत्रियों के लिए मांग खाना अच्छा नहीं बताया है उसको भी ये श्रेय मानता है, गुरुजनों के मारने की अपेक्षा। गुरु न अहत्वा और हत्वा दोनों बातें थी इसी छठे श्लोक में, गुरु न अहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोगतुम भैक्ष्यम अपी है लोके हत्वार्थ कामांश गुरु ने वह भुंजी भोगान रुद्र प्रतिधान। तो अर्जुन का पहले विचार ये हुआ कि मेरे को इस घोर कर्म में न लगा, ये साफ भी कहा है और ये बात थी। कथम भीष्म हम संख्य द्रोण से मधुसूदन ईशु भी प्रतियोगी पूजा रोगन भीष्म द्रोण के और लड़ने के लिए कैसे आप कह रहे हैं, ये तो पूजा के योग है। और दुर्योधन युद्ध करेगा तो भीष्म द्रोण को छोड़कर करेगा नहीं, और भीष्म अपने विजय करनी हो तो भीष्म द्रोण को मारना पड़ेगा क्योंकि वही आड़ में है उसके, इस वास्ते विजय होगी तो गुरुजनों को मारना पड़ेगा। अगर गुरुजन दो प्रकार के होते हैं, एक वंश परंपरा से गुरुजन होते हैं, एक हमारी ज्ञान परंपरा विद्या परंपरा से गुरु होते हैं। तो दोनों बात भीष्म और द्रोण, भीष्म तो हमारी वंश परंपरा से बड़े हैं और द्रोणाचार्य हमारे गुरु परंपरा में बड़े, मैं गुरु से मैं सीखा हूँ और द्रोणाचार्य इतने मेरे पर कृपा मेरी सहायता रक्षा और पढ़ाई कराई है कि जिसमें अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी जो विद्या नहीं सिखाई वो सिखाई है मेरे को, इतना मेरे पर उनका उपकार है। और दादाजी का भीष्म महाराज का तो है ही बड़ा भारी, इनको बाणों से कैसे मारूं, ऐसे अर्जुन का भाव था युद्ध न करने का। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि भगवान ने ही लड़ाई करा दी, ये लड़ाई भगवान ने करवाई, अगर नहीं करवाते तो लड़ाई नहीं होती, ऐसा ही लोग कहते हैं। वास्तव में ये बात नहीं है। भीमसेन था वो लड़े बिना रहता नहीं, वो तो कहता है कि मत नाम कौरव शतम समरे नियावत दुस्साहसन स्थिरंगम संचूर्णयाम गदयान सुयोधन ओरुम संधि करो तु भवतांग निपति पणेन। किसी पण से किसी शर्त पर अगर महाराज जी से युद्ध करे संधि करे तो भवतांग निपति तुम्हारा राजा करे। ऐसा मैं तो जब तक तीन काम है मेरे, सौ धृतराष्ट्र के पुत्रों को सौ को भी मैं मारूंगा और उसको कोई दूजा मार दे तो उसको मार कर सौ संख्या पूरी करूंगा। मत नाम कौरव सतंग समरे ने यावत जब तक न करूं, और दुस्साहसन से रिधिरंग न पिमा म्यूरस्थम दुस्साहसन के हृदय को चीर करके उसका खून जब तक न पी लूं, और संचूर्ण याम गदयान सुयोधनोरुम दुर्योधन की जांघें गदा करके न तोड़ दूं, तब तक संधि कोरे को तो तुम्हारा राजा करे, हम नहीं कर सकते। ऐसा भीम ने, भीम का विचार। तो युद्ध भगवान ने करा दिया ये बात नहीं है, क्या है उसकी स्थिति वो थोड़ी सी बता दूं। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए और भगवान से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो जिससे मैं देख लू। व्यावन निरीक्षे हम युद्ध का मान अवस्थान कई में हसा युद्ध अस्मद अनुसमित युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाला कौन है जरा भले मानसों को देखो धारा से दुर्बुद्धि युद्ध की सभा ये युद्ध में प्रियता चाहते हैं युद्ध करके ही उसका प्रिय करना चाहते हैं तो मैं देखूं। ऐसे जोश से अर्जुन आया था वो युद्ध करने के तैयार और दोनों सेनाओं युद्ध करने के लिए जुट गई है तो युद्ध की तैयारी पहले की है। भगवान ने युद्ध नहीं करवाया है, भगवान ने तो ये काम किया है कि जैसे कोई बद्रीनारायण जाता हो और जाते जाते में भ्रम हो जाए कि ये तो बद्रीनारायण का रास्ता नहीं है तो बताने वाला कहते नहीं तुम भी गलती करता है यही रास्ता है। तो अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाहते थे तो युद्ध के लिए तैयारी थी पहले और युद्ध में बड़ा भारी इसका उत्साह था वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है बड़ा उत्साह था युद्ध करने में और इसकी प्रतिज्ञा भी थी कि मैं युद्ध से हटूंगा नहीं जब तक अर्जुन से प्रतिज्ञा दे न दैन्यम न पलायनम न दीनता करना है न पलायन करना है दो प्रतिज्ञाएं थी। अब वो कहता है कार्पण्य दोषो पथ स्वभाव मेरा स्वभाव उपत हो गया है तिरस्कृत हो गया है अब मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। तब वो भगवान से पूछता है भगवान ने कह दिया कि युद्ध करो कह दिया मांस बनवा पार्थ नहीं तत्व तुम्हारे में ये हिंसापन नहीं होना चाहिए कुतस्वा कसम कहाँ से आया कायर चाहिए आई चलता उत्तेज खड़ा हो जा युद्ध करने के लिए। तब भगवान ने कुतस्वा कहा तो कसम भी सोमांस अर्जुन बोला अरे कहाँ से कायरता आई महाराज कैसे युद्ध करूं भीष्म और द्रोण के साथ में जैसे भगवान कहे वैसे ही कहा। फिर विचार किया कि भी अब भगवान भी जो समझ कर कहते हैं तब उसने धीरे पहले तो वही बात अपने जोश की कही फिर कहता है महाराज कायरता के जोश से मेरा उभर स्वभाव हो गया है इस वास्ते श्रेयस्या निश्चितम ब्रूही तन में जिससे श्रेय हो वही बात मेरे को कहिए। इसका अर्थ ये नहीं है प्रेय उसका ध्येय नहीं था प्रेय और श्रेय दोनों ध्येय है परंतु युद्ध करना ध्येय नहीं है वो प्रेय के लिए युद्ध नहीं करता है श्रेय के लिए युद्ध करता है ये बहुत मार्मिक बात है। दूसरे अध्याय के सातवें श्लोक में भी निश्चितम श्रेयसा तद में ब्रूही और तीसरे अध्याय में भी व्यामर श्रेणी वो वाक्य न बुद्धि मोही ऐसे हुए तब एकम बद निश्चित ये नो हम अपने आप निश्चित करके जिससे मेरा कल्याण हो जाए यही पांचवे अध्याय में कही है कि यह संध्या संक्रमणा कृष्ण पुनर्योगी यू तन में ब्रूषु निश्चित निश्चित कल्याण वो बात कही तीन बार कही अर्जुन ने दूसरे में तीसरे में और पांचवे में तो ऐसी युद्ध की बात श्रेय चाहता है तो श्रेय चाहता है तो कल्याण चाहता है इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ये भगवान उसको कल्याण के लिए कह देते हैं अच्छा छोड़ दो युद्ध तुम भजन ध्यान करो केवल इसका ही करो तुम कल्याण ये युद्ध मत करो ये भगवान ने नहीं कहा। अर्जुन जैसे बीच में भूल गया तो उसको पीछे अपने कर्तव्य की याद दिलाने के लिए कहते हैं तुम युद्ध करो तो युद्ध भगवान ने करवाया वही बात नहीं युद्ध करने के लिए तो पहले से तैयार थे बीच में भ्रम से अपने कर्तव्य से अर्जुन च्युत हो रहा था ये कर्तव्य था कर्तव्य तो कर्तव्य पालन करने के लिए गीता बहुत विशेषता से जोर दे रही है कामना का त्याग करो परंतु युद्ध करने का निषेध भगवान नहीं करते युद्ध के तो बार बार कहा है सर्वेषु कालेषु मा मनुष्यो युद्धेषु युद्धेषु बार बार भगवान ने कहा है। तो युद्ध करो, तो युद्ध करो तो निष्काम भाव से करो। तो निष्काम भाव से युद्ध करने से क्या क्या युद्ध करने से प्रेय की प्राप्ति नहीं होगी? अरे हुई है प्रेय की प्राप्ति, मानो सांसारिक उन्नति है। अभ्युदय और निःशेष कहते हैं, तो निःशेष है श्रेय और ये है प्रेय, तो इसकी भी सिद्धि हुई। अभ्युदय हुआ है, राज्य हुआ है, राज्य लिया है, सब कुछ किया है, परंतु कामना है वो खतरनाक है, कामना नहीं करनी चाहिए। कामना के विषय में एक शंका उठती है प्रायः कि कामना है तो भजन ध्यान की भी कामना है, तत्व की प्राप्ति की भी कामना है, साधन की भी कामना है, ईश्वर के दर्शन की भी कामना है, जीवन मुक्त होने की भी कामना है, तो उसका विश्लेषण करना मेरा उद्देश्य था कि वो कामना नहीं कहलाती, वो आवश्यकता कहलाती है। भगवान की कामना कामना नहीं, कामना वो होती है जिससे नाशवान वस्तु मिले, अविनाशी तत्व की प्राप्ति न हो, उसके लिए चेतना कामना है। और अविनाशी तत्व की प्राप्ति के लिए उद्योग किया जाए वो वास्तव में आवश्यकता है। तो आवश्यकता की और कामना की दोनों की अलग अलग व्याख्या करने का उद्देश्य मेरा था। ये बिल्कुल मेरा कभी हुआ ही नहीं कि अभ्युदय नहीं चाहिए, अभ्युदय का त्याग करो। ये मेरे से परिचित है वैष्णव ने 20-50 वर्षों से, मैंने कभी नहीं कहा है कि लोगों को उन्नति नहीं करना है। मेरा उद्देश्य है कि आध्यात्म उन्नति करने वाले की लौकिक उन्नति होगी स्वतः, रिद्धि और सिद्धि जाके हाजिर हो पड़ी है, सब रिद्धि सिद्धि अभ्युदय की बातें उनके चरणों में लौटेगी, जो कर्तव्य में तत्पर होगा और कर्तव्य के ऊपर ही भगवान ने जोर दिया है। केवल कामना और इच्छा क्या थी, कामना इच्छा और भगवान की प्राप्ति की मुमुक्षा, ये दो चीज मिली हुई है, उसका विश्लेषण करने का मेरा तात्पर्य था। मेरा कभी ऐसा हुआ नहीं है, नहीं होगा भी नहीं, ऐसा दिखता है, होगा क्या भगवान जाने, भविष्य में कौन कहे क्या हो जाए, पर मेरा नहीं है, गीता में ऐसी बात नहीं है। तो अभ्युदय सिद्धि करने के लिए केवल लगोगे तो श्रेय की सिद्धि नहीं होगी, और श्रेय की सिद्धि करो तो प्रेय की सिद्धि मार्ग में होगी ही, अवश्यम भावी होगी, कोई छोड़ दे अलग बात है, पर छोड़ दे ये बात गीता नहीं कहती है। यद्यपि गीता का अर्थ बहुत से लगाते हैं, कहते हैं, मैं भी जानता हूँ, कहता हूँ कि भाई सब छोड़ छोड़ा भजन में लग जाओ, परंतु गीता नहीं कहती है। विचार कर देखा जाए, आप क्षमा करेंगे, गीता के गीता में संन्यास आश्रम लेने के लिए वास्तव में नहीं कहा है कि सब छोड़ करके बाबा जी बन जाओ और काम करो, ये बात नहीं कही, बहुत थोड़ी आती है। निराशी तक सर्वपरिग्रह सारी रंग केवल कर्म कुलो दिखिल विषम, असली एक श्लोक आता है और दो चार श्लोक आते हैं गौण रीति से। संन्यास आश्रम के लिए गीता पिछड़ा नहीं करती है, संन्यास कहती है कर्तव्य पालन करने पर, संन्यास आश्रम लो तो संन्यास के धर्म में वो तत्व पालन करो, गृहस्थ रहो तो गृहस्थ के धर्मों का तत्परता से पालन करो, स्त्री आते स्त्री अपने धर्मों का पालन करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वेद शूद्र है स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धि लभते नरः। ये गीता का बड़ा उद्घोष है, बड़ा जोर से कि अपने अपने कर्तव्य के पालन करने से कल्याण की प्राप्ति होती है। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं स्वकर्मणा समभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानव, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार तत्परता से कर्म करो। उसमें भी जोर इतना दिया है तस्माद अशक्त सततम कार्यं कर्म समाचर, कर्तव्य कर्म का आचरण सततम निरंतर करो, अगर आसक्ति रही तो करता हुआ परमात्मा से परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो गीता में मेरी मान्यता बताता हूँ, अलग मैं ठेका नहीं लेता हूँ, गीता मेरे को प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, अभ्यास भी करता हूँ, परंतु मैं कहता हूँ इतना ही अर्थ है ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं अपनी बुद्धि का परिचय देता हूँ गीता को लेकर कि मेरी बुद्धि इतनी से, जैसे आप लोग समझ रहे हैं कि इतना जानता है ये, अपने बुद्धि का परिचय देने के लिए कहता हूँ। गीता का सिद्धांत अपार है, असीम है। मनुष्य की भी बुद्धि का जल्दी क्षय नहीं आता, पार नहीं आता। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वो अनंत है, कथा ही अनंत है, लीला भी अनंत है, नाम भी अनंत है। तो भाव अनंत नहीं होंगे? भाव तो एक साकार मूर्ति होती है, उसके भावों का अंत नहीं आता। तो गीता के भावों का अंत नहीं आता है। परंतु मेरी जान में एक मार्मिक बात बताता हूँ, व्यवहार में परमार्थ की कला सिखाती है गीता। व्यवहार करते हो, वो व्यवहार करते हुए परमार्थ सिद्ध कर लो, ये गीता सिखाती है। व्यवहार छोड़ने की बात गीता नहीं कहती है। व्यवहार करते हुए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्धेश नैवम पाप मापसी एतान आतताइन हत्वा पापम एवार से पाप ही लगेगा। भगवान कहते हैं तुम धर्म एवं धर्म्यम संग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्तन से हित्वा पाप मापसी। अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान के युद्ध न करने से पाप लगेगा। तो पाप से छूटे कैसे हो? तो पाप से छूटना है सुख दुख के समय के तो लाभा लाभ जया देव तथो युद्धा युद्धेश्व नैवम पाप। इस प्रकार से पाप नहीं लगेगा। समता समत्वम योग उच्यते, योग नाम समता का है। तो राग द्वेष हर्ष शोक न करते हुए अपने कर्तव्यता से लगे रहो, इससे निश्लेष और अभ्युदय दोनों सिद्धि हो ही जाएगी, अनिवार्य है ये समता। तो समता से लौकिक सिद्धि भी होती है, राग द्वेष से लौकिक सिद्धि भी नहीं होती है। आज राग द्वेष ज्यादा फैल जाने से लोग दुख पा रहे हैं। अभ्युदय तो कहाँ ही गया पता नहीं, श्रेय की तो बात ही नहीं है, अभ्युदय भी नहीं कर सकते हैं। तो राग द्वेष है, ये दोष है। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मधुर मात्सर्य ये छह रिपु है। इनके बस में होने से आदमी ना अभ्युदय कर सकता है ना निश्लेष कर सकता है। तो इनको सब करके अपने कर्तव्य का पालन करो, आपका अभ्युदय निश्चय होता है, निश्चित होगा 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 ही। आपका कभी भी पतन नहीं हो सकता, अथवा अभ्युदय से आप रहित नहीं हो सकते। जी गीता ने ये बात कही है। तो गीता बड़े जोर से कहती है, अभी मैंने बताया ना, असक्ता सततं मशीन की तरह निरंतर करते भी कर्म करो। और भगवान के स्मरण की बात कही तो भी सर्वेषु कालेषु मां मनो स्मर युद्ध च, और युद्ध भी करो भगत पर, निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए करो। और अपने कर्मों को भगवान की पूजा की सामग्री बनाओ। ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारण वर्णों का भगवान ने 18वें अध्याय 81, 42, 43, 44 श्लोकों में वर्णन किया है। और उन्हीं वर्ण धर्मों को भगवान के अर्पण करने से परम सिद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। तो अपने अपने कर्तव्य में डटे रहो। अर्जुन का वर्ण धर्म था युद्ध करना, वो युद्ध करने से विमुख होता है, ये भगवान ने कृष्ण कहा उसको। तीन पुंसकता हिंद्रापन है, कमजोरी है। तो करते भी कर्म करते हुए परमात्म तत्व का लक्ष्य रखते हुए सांसारिक काम करो तो अभ्युदय की सिद्धि उससे होगी, बिल्कुल होगी, इसमें संदेह नहीं। तो मेरा कभी आशय ये नहीं रहा कभी कामना की सिद्धि ये अभ्युदय की सिद्धि न करे। कामना और आवश्यकता क्या चीज है, इन दोनों का विश्लेषण करने के मेरे तात्पर्य ऐसा कर उस पर शंका करो, जितनी आपसे हो सके उतनी करो। मेरी बड़ी प्रसन्नता होगी, मैं समझूंगा कि मेरे विषय को समझते तो है कम से कम। शंका नहीं करोगे तो चुपचाप सुन लिया तो क्या पता लगेगा आप समझे कि नहीं समझे।
अनुभव कल मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि हम अभ्युदय के लिए लौकिक समृद्धि के लिए काम करते हैं, ये धर्म नहीं है क्या?
ये भी धर्म है, ये धर्म आवागमन वाला है। इसका 19, 20, 21 दोनों श्लोक 9वें अध्याय का त्रैविद्या माम सोम पाप पूत पापा यज्ञ स्वर्ग से प्रार्थियंते ते पुण्य मासा सुरेन्द्र लोकम अस्नंत दिव्यान दिव्यदेव भोगान ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामाभवन्ति। केवल सांसारिक इच्छा रखोगे तो स्वर्ग आदि जाकर के क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक गतागतं काम कामाभवन्ति गतागत को प्राप्त होंगे। ये बात बताई है अध्याय में त्रैविद्या वेद त्रय का आश्रय लेने वाले अथर्व वेद में व्यावहारिक बातें विषय है त्रैवेद ही बताया है स्वामी यज्ञ तो त्रैविद्या माम सोम पा पूत पापा यज्ञ निष्पा पूत पापा कौन से पाप नष्ट हुए यहाँ तो पूत पापा कहा था और वहां के क्षीणे पुण्य तो पाप और पुण्य दोनों क्षीण अपने मुक्ति होनी चाहिए। इन दो श्लोकों में त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ स्वर्ग से प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम अस्नन्त दिव्यान् दिव्यदेव भोगान् और तेतम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। तो पूत पापा पहले हो गए पुण्य क्षणम हो गए पर मुक्ति होनी चाहिए ना दोनों ही बातें दोनों श्लोकों में। तो तात्पर्य इसका क्या है कि पाप वे नष्ट हुए हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति में प्रतिबंधक हो वे पाप नष्ट हुए हैं और क्षीण पुण्य वे हुए जिन पुण्यों से स्वर्ग लोक मिला है वे वहां भोगने से क्षीण हुए हैं कि सब पाप और पुण्य नष्ट की बात नहीं आई। किसी टीकाकार ने मैंने देखी आपको पास हो तो आप बताओ मैं तो और सीखूंगा। किसी टीकाकार ने पाप पूत पापा पाप नष्ट हुए जो स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप है वे नष्ट हो गए और जिन पाप पुण्यों को भोगने के लिए स्वर्ग में आश्रम गया था वे हुए फिर गतागतंग काम कामा लभन्ते काम भोगों की कामना रखने वाले गतागतंग लभन्ते एक ऐसी है। अभ्युदय की स्थिति करनी हो तो अभ्युदय करना केवल औरों के लिए सर्वेशु कार्यु महामनुस्मर सब कर्म में भगवान का स्मरण करो और काम करने का तात्पर्य सबका हित कैसे हो। ज्ञान का साधन जहाँ बताया है जो कि वास्तव में सर्वथा निवृत्ति परक है वहाँ ज्ञान के साधन में ये बताया है ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में रत रहे वे मेरे को प्राप्त होते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति में भी कहते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण क्रमशः छिन्नद्वेधायत आत्मान सर्वभूत हिते रसा प्राणी मात्र के हित में रसी। तो हित करने से गीता ने बड़े जोर से कर्मयोग की बात बताई है तीसरे अध्याय में चौथे अध्याय में। जिस तीसरे अध्याय का जब विवेचन लिखने लगे तो मेरे को तो ऐसी मालूम थी कि सांसारिक काम ठीक तरह से न्यायुक्त करते हुए सांसारिक ठीक उन्नति करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे बिना परमात्मा की प्राप्ति के साधना किए। उल्टा समझ लेना है कि भाई परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन नहीं करना है ऐसा ऊंधा नहीं परंतु लौकिक काम किए जाए तेवान भावयता ते देवा भावयंत परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। एक एक हित करने से तो सर्वभूत हित है यथा प्राणी मात्र का हित करना है तो प्राणी मात्र का हित करना है केवल सुख नहीं। गोस्वामी जी भी कहते हैं पर हित सर्विस धर्म भाई पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई सर्वभूत हिते रहता। भगवान राम जी अंगद को भेजते हैं तो काज हमार तासु हित होई पर हित सर्विस धर्म नहीं भाई तो सबके हित में अपना हित है सबके कल्याण में अपना कल्याण है अपने व्यक्तिगत कल्याण में सबका कल्याण नहीं है और सबके कल्याण में अपना कल्याण है। तो सांसारिक व्यवहार करते हुए स्वार्थ का त्याग अभिमान का त्याग करके सबको सुख पहुंचाना है तो मैंने अभ्युदय स्वतः होगा स्वाभाविक होगा ही निश्चित बात है। इस वास्ते में अभ्युदय विशेष उसके निंदा नहीं करता हूँ निषेध नहीं करता हूँ बार बार क्या कहूँ कामना और आवश्यकता एक मान रखिए, उसको दूर करने की बात कही थी। इस बात के गीता के अनुसार चले तो उनका काम सिद्ध होता है। दो आदमी थे भूखे, उनके सामने सब सामग्री रख दी और कमर बंद कर दिया और उनके हाथों के यहां पर लकड़ी बांध दिया, कुआकाश बांध दिया, कसके बांध दिया दोनों में। अब भोजन सामग्री से और भूखे हैं, अब खावे कैसे? तो भोजन के उन्होंने क्या किया कि भोजन परोस करके वो तो उसके मुख में दे दे, दोनों जी मिले भोजन से। ऐसे दूसरों के हित करने में अपना हित होता है। भोजन में तो दूसरों के भोजन करने से पेट नहीं भरता है, परंतु ये अभ्युदय की स्थिति है। दूसरों के अभ्युदय करने से अभ्युदय होता है और अपनी उपदय करने से, जैसे अर्जुन अपनी केवल संपत्ति प्राप्त हो जाए, राज मेरा अखंड रहे, यही भाव रखा था। भगवान के पास गए निमंत्रण लेने के लिए, महाभारत में आता है कि प्राप्त हो जाए राज मेरा अखंड रहे, यही भाव रखा था। भगवान के पास गए निमंत्रण लेने के लिए, महाभारत में आता है। तो पहले दुर्योधन पहुंचा, दुर्योधन देखता है कि कृष्ण भगवान को अपने पक्ष में कर दो ठीक हो जाएगा। तो वो बैठो बैठ गया तो भगवान सोए हुए थे, तो सिरहाने सिंहासन पड़ा था, उस पर दुर्योधन बैठ गया। फिर अर्जुन पहुंचा, वो पैरों की तरफ खड़ा, हाथ जोड़े हुए। भगवान नींद खुली तो देखा पहले अर्जुन मिला। क्या हो अर्जुन? तो दुर्योधन बोलता है, महाराज पहले मैं आया हूँ। श्रेष्ठ पुरुषों का ये कायदा है, जो पहले निमंत्रण देता है उसका स्वीकार करते हैं। तो मैं पहले आया हूँ, मेरी बात आपको सुननी होगी, हम रंग निमंत्रण देने के लिए आपको आपके पास आए हैं। भगवान ने देखा तेरी नींद पहले ही हो गई, अब देखा तो अच्छा, बहुत अच्छे आप आए हैं, बहुत ठीक है। तो भगवान ने कहा कि मैं दोनों की सहायता करूंगा, परंतु अर्जुन छोटा है, दुर्योधन और भीमसेन ये समान थे, अर्जुन था छोटा। तो दो पांति की जाए जिसमें पहले छोटे को दी जाती है, उस पांति छोटे की होती है। तो मेरे दो भाग है, दोनों की मैं सहायता हूँ। आप आइए पहले, अर्जुन मिला पहले। दुर्योधन ने बड़ी प्रशंसा करी, आज श्रेष्ठ पुरुषों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ पुरुषों का कायदा जो पहले निमंत्रण थे उसे स्वीकार करते हैं, इस बात से मैं पहले आई हूँ, मेरी होने से। भगवान के बहुत ठीक है, ठीक बात है। तो दो विभाग कर दिए भगवान ने, एक तरफ तो मेरी एक अक्षोणी सेना शस्त्र अस्त्रों से सजी धजी रहेगी और एक तरफ मैं निःशस्त्र रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, निःशस्त्र। अब इनमें दोनों में से दुर्योधन को कहा, देखो तुम बड़े हो, पहले अर्जुन को दिया जाए, तुम अर्जुन तुम स्वीकार कर लो। तो अर्जुन ने कहा, महाराज मैं तो आपको ही स्वीकार करता हूँ। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ कि बहुत ठीक है। अब वहाँ कोई निश्चित थे को ले जाकर कोई भोजन थोड़ी कराना है, वहाँ तो युद्ध कराना है, और कहते मैं शस्त्र प्रयोग करूंगा नहीं, तो वहाँ क्या करेंगे? ये ठीक हुआ, राजी हो गया। मिला तो कहा कि आज कृष्ण को, आज पांडवों को लीला कृष्ण को भी मैंने ठग लिया है, उनकी अक्षोणी सेना ले ली है। वे संसप्त गण है, युद्ध का वर्णन आता है, जहाँ उन भगवान की दी हुई नारायणी सेना के मारने में, परास्त करने में पांडवों को बड़ा भारी जोर आया है। ऐसी विदेश सेना थी वो। भगवान अर्जुन ने कहा, वो चला गया तो भगवान ने अर्जुन को धमकाया, अर्जुन ये क्या किया सेने? मैं दुर्योधन को कहता तो वो सेना ही लेता, मेरे को थोड़ी देता वो। तेरे को मौका दिया था, तेने मेरे निःशस्त्र को लेकर क्या करेगा तू? कि महाराज मेरे टोली नहीं बनानी है, बहुत संख्या अधिक हो जाए, नहीं करना है, आप जहाँ रहेंगे वहीं विजय होगी। इस वास्ते तो मेरे काम क्या कराएगा? जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, शस्त्र ही नहीं चलाऊंगा तो क्या करेगा? कि महाराज घोड़े अंकाऊंगा। मेरे बहुत दिनों से मन में थी कि भगवान कृष्ण मेरे सारथी बने, एक सारथी गण बड़े होशियार, भगवान स्वरूप है साहब, तेरे सब कामों में बड़े होशियार है, तो आपसे सार्थ कराऊंगा, रथ आप चलाओ बैठ कर आगे और मैं रथी बनूंगा, आपको सारथी बनाऊंगा। तात्पर्य कि मेरी बागडोर आपके हाथ में रहेगी, जैसे चलाओ वैसे लूंगा मैं, तो बागडोर आपके हाथ में मेरी सब। ये शरणागति भगवान फिर खुश हो गए, ठीक किया था ने, प्रसन्न हो गए। तो युद्ध के बीच में विजय चाहने वाला था दुर्योधन, तो उसको केवल अभ्युदय चाहता था, तो न अभ्युदय मिला न श्रेय मिला, भगवान की कृपा से सेव हो जाए वो अलग बात है। अर्जुन ये बात, अर्जुन तो सेव अपने पहले अर्जुन नहीं चाहता, जब अर्जुन गया भगवान के पास उस समय तो युद्ध चाहते थे, ये तो अचानक बात पैदा हुई। वो किस वचन से हुई, पहले अध्याय में कहा है संवेतान कुरून कुरून पश्य, कुरून ये बात कही इसने, कुरून पश्य कहा ना, धात्रास्थान पश्य कहते तो जोश आता अर्जुन के, परंतु कहा कुरून पश्य, तो कुरुवंशियों को तुम देखो, तो कुरुवंशी सब एक हो जाते हैं, पांडव धृतराष्ट्र के पुत्र और पंडु के पुत्र दोनों कुरुवंशी है, कुरून पश्य देने से ही वो मोह जागृत हुआ। तो ये मोह जो कौटुंबिक स्नेह है, ये अर्जुन के पहले जागृत हो गया तो गीता के उपदेश द्वारा दूर कर दिया, और महाराज युधिष्ठिर के युद्ध समाप्त होने पर मैंने बड़ा काम गलती करी, कुटुंब मर गया ना हो गया, तो उनके मोह हुआ, उसको भगवान ने भीष्म जी के द्वारा दूर किया, मोह भीष्म जी से उपदेश दिलाया। तो मोह को दूर करने का तात्पर्य गीता का है, केवल कल्याण है अभ्युदय नहीं चाहिए, ये बात नहीं है, अभ्युदय होता है जिसका वास्तव में पारमार्थिक उन्नति करता है, उसकी व्यवहारिक उन्नति होती है स्वतः, और केवल व्यवहारिक उन्नति चाहता है परमार्थिक नहीं, उसकी व्यवहारिक उन्नति भी नहीं होती। आज दुनिया में बड़ा विप्लव हो रहा है, इनका ध्येय परमात्मा न रहकर केवल संग्रह और भोग यही रह गया, संग्रह करना भोग भोगना, उसकी परमात्मा की सत्य प्राप्ति नहीं होती, न अभ्युदय की स्थिति होती, वो भी नहीं होती, दोनों मारे अवरुद्ध हो जाते। इस वजह से भगवान ने कहा भैया तुम इस तरह से युद्ध करो, युद्ध करते हुए परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, तो कल्याण की प्राप्ति और अभ्युदय की सब सिद्धि हो गई, और वो अर्जुन के सब हुई। फिर अपने पौत्र को राज्य दे करके पांडव चले गए, वीर संन्यास ले लिया, परंतु विजय अर्जुन की हुई, तो विजय होने के लिए भी निष्काम भाव की आवश्यकता है, और सकाम भाव से किया जाए तो स्वर्ग में क्षीरे पुण्य गसा कसन कामना बनते है। तो वो कामना का त्याग करना, तो मनुष्य की श्रृंखला से कामना का त्याग करे, भूख लगी तो भोजन का त्याग कर लें, प्यास लगी तो उसका त्याग कर लें, ऐसी इच्छा इस वास्तव कैसे त्याग कर लें, तो भाई इस शरीर की आवश्यकता है, आवश्यकता को रहना और चीज है, कामना करना और चीज है, तरह तरह के स्वाद चाहना जिह्वा के लिए वो तो है कामना, और आवश्यकता को भोजन करना ये है पेट की आवश्यकता, तो शरीर की आवश्यकता ऐसे जीव के लिए परमात्म तत्व की आवश्यकता है, पर वो भी अभ्युदय के लिए भी किया जाए तो उद्देश्य अपना परमात्मा की प्राप्ति का हो, उद्देश्य उसका प्राप्ति का हो, वो व्यवहारिक काम करते हुए परमार्थ की सिद्धि हो जाएगी, ये गीता का उद्देश्य है। इस वास्ते अभ्युदय के लिए निषेध नहीं करता मैं कभी, मैं तो मन की कामना और आवश्यकता क्या है इसको एक समझ लेते हैं, उसका विश्लेषण करने में मेरा तात्पर्य था। अब इसमें कोई शंका हो तो बोल दो, बीच में बोल दो, मेरी बात में शंका हो तो आप बोल दो बीच में, फिर उसका विचार करें, जैसे आप शंका करोगे तो मेरे चित्त में तो प्रसन्नता होती, ये पढ़ने से ठीक है, वेदों के पढ़ने से, शास्त्रों के पढ़ने से, स्मृतियों के पढ़ने से ये सिद्ध होता है अभ्युदय के लिए भी मनुष्य धर्म है, परंतु एक बात बताएं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ है, तो चार पुरुषार्थ में धन से धर्म, धर्म से धन, धन से धर्म, धर्म से धन, ये आपस में एक एक ही वृद्धि करने वाले हैं। धन का व्यय किया जाए धर्म के लिए, धर्म का भी नुकसान होता है और धर्म से अच्छा कुल आदि वो मिलता है, वो गलत बोलता है उसे। धर्म कर, धर्म से धन, धन से धर्म। अब काम रहा, काम वो काम में लग जाता है धन तो उसे नाश हो जाता है, और काम में लग जाता है धर्म तो उसे नाश हो जाता है। अपने कामना पूर्ति के लिए धन लगाएगा, धन नष्ट हो जाएगा, और धर्म से भी कामना ही पूर्ति करोगे तो धर्म भी नष्ट हो जाएगा। ये काम से वो खा जाएगा। महासनो महापापमा विद्यम ही वे, ये महासन है, बहुत खाने वाला है, कितना ही दे दो। हमेशा कृष्ण बस में भूया से पदार्थ नहीं होता। तो कामना का त्याग करके काम करो, ये तात्पर्य भगवान का है। और फिर काम करो, आप करो उसे कल्याण होगा। कामना का त्याग करने पर धर्म का अनुष्ठान करो, कल्याण होगा, और अपने कर्तव्य का पालन करो, कल्याण होगा। और कर्तव्य से अपने समाज का ठीक तरह से निर्माण होगा, समाज का भी और लौकिक भी और पारलौकिक भी दोनों सिद्ध होंगे। इसमें कर्म शंका करो, जिस भाई ने दिया है उसे कहना है कि प्रेम से आप करो, शंका करो। शंका करने से बातें बहुत पैदा होती है, शंका नहीं करने से तो एक मैं कैसा चला जाता हूँ, वो कहते ही चला जाता हूँ, और शंका से प्रकाश मिलता है एकदम, कहाँ इसका अवरोध होता है उसका पता लग जाता है ठीक तरह से। आप कहते हैं कि शंकाओं का समाधान आपसे हम प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे प्राप्त होगा, ऐसा भाव हम कहते हैं। अब इसमें शंका हो बताओ, सांसारिक उन्नति भी करना है मनुष्य को और व्यवहारिक भी करना है, परंतु केवल व्यवहारिक स्थिति करना है ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं। ये दूसरे भी चाहते हैं, खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर खर तेषाम येषाम को विशेष होती वृत्ति ये शांतारी, अगर वैसी वृत्ति है तो मनुष्य में प्रथम फर्क क्या है। मनुष्य की दो बात खास करने की है, एक तो दूसरों का हित करना और एक भगवान को याद करना, ये खास काम है मनुष्य के लिए। ये देवताओं के भी नहीं आता है, देवता भी सुख भोग के लिए गए हैं, नार की जीव भी पापों का फल भोगने के लिए गए हैं, 84 लाख जोनी के जीव भी अपने पाप का फल भोगने के भोग योनियां हैं, और कर्म योनि एक कहलाती है। कर्म योनि कहते हैं साधारण जन्म मरने जाने वालों के लिए, और वास्तव में मनुष्य का है ये साधन योनि है, साधन करके अपना लोक परलोक शुद्ध करे, इसके लिए मनुष्य शरीर है। इस बात को खूब उत्साह से करना चाहिए। मनुष्य जैसे युद्ध करता है, अब ध्यान देना, अर्जुन युद्ध करता है तो युद्ध करता है उसमें अगर विजय अर्जुन का लक्ष्य न हो, बिल्कुल न हो, तो ये तो मर जाएगा। सावधान रखनी, मैं न मारूं और शत्रुओं को मारूं, ये दो बात तो रहती है ना युद्ध करने वालों में, मैं न मर जाऊं और शत्रुओं को विजय कर लूं, तो मैं ये थोड़ी है कि शत्रु को मेरे पर विजय करे, ये नहीं है। भगत पर बड़ी बड़ी विचित्र दशाएं हुई है अर्जुन के युद्ध में, आप देखो घटना बहुत विदिक्षण घटना है। अर्जुन युद्ध करने के लिए गया है जयद्रथ वध करने के लिए, उस दिन भगवान ने अपना संदेह साथ में, आप सारथी बने भगवान अर्जुन का रथ हाँकते हैं, और अपने दारू से कहा कि तुम्हें अपना रथ है जो हमारे साथ रखना पीछे पीछे। भगत पर ये प्रतिज्ञा नहीं पूरे मेरे युद्ध करना पड़े, इस बार शस्त्र अस्त्रों को लेकर तैयार रखना और मेरे साथ रखना। भगवान की बहुत विलक्षण विलक्षण बातें, विचित्र विचित्र की बातें युद्ध में आप देखो तो भगवान की कैसी कृपा, कितनी विलक्षणता है जिसका कोई हद नहीं है। वो तो बुरी सुबह था महाराज, वो कहते हैं कि तो साथी की गदा सारे काटने लग गया। तो अर्जुन को कहा कि मारो बाण इसके, तो हाथ भूजा वाला हाथ सलवार थी वो हाथ काट दिया। तो वो बिगड़ा कि मैं युद्ध कैसा था अर्जुन के साथ में, आपने बीच में क्यों किया। तो मुझे अब बात कर दिया तो उसको बचाया भगवान ने।
विशेष प्रश्न नहीं है, जिस रथ के बागडोर अर्जुन ने श्री कृष्ण के हाथ में दी थी वो कैसा है और उसके साथ घोड़े क्या है, वो रथ का स्वरूप क्या है।
रथ का स्वरूप महान रथ था महाराज, क्या बताऊं रथ के स्वरूप की आश्चर्य आता है। एक योजन चल तो उसकी ध्वजा थी, इतनी बड़ी थी, और वो चलती थी तो वृक्षों में कहीं अटकती नहीं थी। एक योजन ध्वजा, और रथ में कितनी कितनी गाड़ियां भर जाए वो संख्या याद नहीं, इतना गाड़ा भरे जितना बीच में रखे हुए अस्त्र शस्त्र थे उस रथ में, और 100 घोड़े थे। उन 100 घोड़ों में से कितने ही मर जाए 100 सीखिया पूरी रहती थी। उन 100 घोड़ों में से 4 घोड़े था गए अर्जुन के रथ के हाथ से हाथ थे, मर जाए दिया घोड़ तैयार हो जाएगा, 100 की 100 संख्या रहती थी। वे घोड़े जोते गए थे
उत्प्रेक्षाओं में अर्थ सारे ऐसा लगता है, ये उत्प्रेक्षाओं में रथ का और घोड़े का वर्णन चाहते हैं ऐसा लग रहा है। रथ का क्या है, 7 घोड़े क्या है
ना, मैं वो नहीं, वो रूपक करके मैं रूपक नहीं मानता हूँ, मैं तो इतिहास सच्चा मानता हूँ। मैं तो इतिहास को सच्चा मानता हूँ, रूपक नहीं मानता हूँ। कई महाभारत को रूपक मानते हैं, सच्चा इतिहास नहीं मानते। ये तो एक मन की लड़ाई है। मैंने वो भी गीता की टीका देखी है जिसमें अंधा दृष्टा चाहिए तो है मन अंधा और बुद्धि है ये वो है संजय और कृष्ण भगवान है ये है स्वरूप, ऐसे करके आप क्या योग में घटाइए सब ही। गांधी होता वो क्या ऐसे बैठ जाते हैं तो गांधी ये गांधी विषय हो गया। इस तरह से बड़ी विशिष्ट कथा है, वो भी मैं देखी गीता। ऐसे गीता के कई तरह के अर्थ है, मैं कुछ देखना कम पड़े है, सब मैं जानता नहीं हूँ, पर गीता की रुचि रही है तो गीता को देखता हूँ तो उसी टीका पढ़ने का मन करता है। ऐसी टीका हुई है तो रूप बसाया है महाराज। जिनको ये समाधान नहीं है कि युद्ध में इतनी हिंसा हुई ये ठीक नहीं है, उस हिंसा से बचने के लिए कहते हैं ये तो मन के युद्ध की बात है, महाभारत की है ही नहीं। अरे भाई युद्ध में और जैसे कामना करके यज्ञ आदि किए जाए वो इनकी हिंसा हिंसा नहीं मानी जाती, ये सिद्धांत है। ये हिंसा नहीं होती, हत्या नहीं होती है, पर मारना ही हत्या होती है ऐसी बात नहीं है, तो वो शंका उनकी होती है। इस बात से ठीक उत्साह से अपने कर्तव्य पालन करो। गीता के पढ़ने से मेरे मन में आई वो बात एक बार कहती फिर दोबारा कहता हूँ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए। मैंने उम्र पर कहा है और कहता हूँ तो महान काम यह गीता का है, परंतु गीता के 3rd अध्याय की व्याख्या करने लगे तो मेरे ऐसे समझ में आई कि कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना है। अपनी मर्यादा के ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्रियां और पुरुष अपने अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते कल्याण स्वतः हो जाएगा। कल्याण उत्पन्न नहीं होता है, परमात्मा की प्राप्ति है मुक्ति वो उत्पन्न नहीं होती है, वो तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, स्वतः सिद्ध तत्व है उसको प्राप्त करना है। इस वास्ते मुक्ति करना नहीं है, ठीक मर्यादा से तो मुक्ति स्वतः ही हो जाएगी, स्वाभाविक हो जाएगी, ऐसा दिखता है गीता।
जब हम आपकी बात सुनते हैं तब तो ऐसा लगता है हम ज्ञान के बहुत नजदीक हैं, और जब उस आपसे हटते हैं तो ऐसा लगता है हम ज्ञान से बहुत दूर हैं।
मेरे वो हटते नहीं है, संसार में लगते हैं तब होता है ऐसा, मेरे हटने से नहीं होता है। संसार को महत्व देते ही वो हो जाती है। इस वास्ते संसार की स्वतंत्र सत्ता देना और उसको महत्ता देना ये पतन का रास्ता है। इसको सत्ता महत्ता न दे करके कर्तव्य मात्र पालन करने के तत्परता से काम करना, तत्परता से संसार काम तत्परता से करना है। तत्परता से वही कर सकता है जो निष्काम भाव से करेगा। सकाम भाव से करने वाले की बार बार कामना आती रहेगी, जिसमें कर्तव्य च्युत होता रहेगा। और कामना कोई है नहीं तो तत्परता से सांगोपांग अच्छी तरह से काम करेगा। वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, अपने घर में बालगत वस्तियां बीमार होती है तो दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं, दूसरे वैद्य को बुलाते हैं। दुनिया का इलाज तो वे स्वयं करते हैं, अपने घर में बालक होता है, वस्तियां बीमार होती है तो दूसरे डॉक्टर को बुलाते हैं। कारण के अपने जहाँ ममता होती है वहाँ बुद्धि काम कम करती है, जहाँ ममता नहीं होती वहाँ बुद्धि काम करती है। तो दूसरों का इलाज तो डॉक्टर करे और डॉक्टर के घर में इलाज दूसरा डॉक्टर करे, ये रीत है। आप देख लो जहाँ स्वार्थ बुद्धि ममता होती है वहाँ आदमी कर्तव्य च्युत हो जाता है, कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। और जो स्वार्थ नहीं होता है, अहंता नहीं होती है, ममता नहीं होती है, विहार कामान या सर्वान पुमान दिष्पी है, निर्ममो निरहंकार शांतिमति गच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्ति होती है, ब्राह्मी स्थिति हो जाएगी। विहार कामान या सर्वान पुमान 71वां श्लोक है, तो उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी विष्णु बात है, थोड़ी बात हो रही है, दो तीन मिनट समय हो गया है।
आपका इतवार है, हमारा इतवार।
लोग कहते हैं कि तुम लोग मुफ्त में खाते हो, मैं कहता हूँ मुफ्त में हम खाते हैं, हमारी छुट्टी नहीं मिलती। आप कमा कर खाते हैं, रविवार की छुट्टी तो मिलती है, हमारी छुट्टी मिलती ही नहीं। हमारे इतना काम रहता है, रोजाना काम रहता है, कभी छुट्टी होती है ना। आप कमा कर खाते हो और कहते हैं लोग महाराज हम नहीं कमाओ तो तुम्हारी क्या दशा होगी। तो कमाते फिर हमारे लिए ही, और आपके तो कोई काम है ही नहीं, भूखे मर जाएंगे बेचारे, इस वास्ते कमाते हैं ना, ये नियत है। बात बनाते हैं हम नहीं कमा तुम्हारी क्या दशा होगी, तो मालूम होता है कि हम साधुओं के लिए कमाते हैं, आप इस वास्ते उद्योग करते हैं। तो ये हम तो मान लेंगे भाई, हमारे तो ये बात है कि हम तो मान लेंगे आप हमारे। देखो एक संत थे, वह ऋषिकेश में आए, बड़े नीचे सत्संग हो रहा था, तो हम बोले कहा देखो भाई तुम ग्रस्त हो, तुम हमारे माँ बाप हो, जितने अभी ये तो माता है, ये हमारे बाप है, माँ बाप तुम ही हो और बेटा बेटी भी तुम ही हो, हमारे बेटा बेटी भी तुम ही हो। दोनों कैसे हैं कि आपसे हम पैदा हुए, आपसे पढ़े, आप ही पालन कर रहे हैं तो माँ बाप हो गए, हम बीमार हो जाए तो सेवा कौन करे, बेटा बेटी करे, आप ही सेवा करोगे तो बेटा बेटी भी आप ही हो, माँ बाप भी आप ही हो, हमारे तो आप ही हो सब कुछ। नारायण 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 नारायण। प्राण किस स्थान पर गया, हनुमान जी कहाँ मरे, हनुमान जी मरे नहीं, भगवान के साथ ही नहीं गए। उन्होंने तो कहा है कि जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक मृत्यु लोक में रहेगी, मैं सुनूंगा। भगवान का मरना कहीं आया ही नहीं हनुमान जी का। बालक पूछता है किस स्थान पर प्राण गए हनुमान जी का।